श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पिछले दो दिनों से रासलीला तत्व की चर्चा हो रही है और प्रयास ये रहा है कि रासलीला इतनी महान क्यों मानी जाती है, इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण हो जाए ताकि जो भी गलत धारणाएं हैं उनका खंडन हो और हमारी समझ, हमारी निष्ठा और श्रद्धा और सुदृढ़ हो जाए। पहला कारण या पहली बात जो हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति को योग्यता चाहिए इसके पहले कि वो रासलीला के बारे में सोचने का भी प्रयास करे, बोलने की बात दूर है। दूसरी बात ये जानना आवश्यक है कि रासलीला करने वाले अर्थात श्री कृष्ण वो कौन है, वो स्वयं भगवान है और भगवान होने का क्या मतलब है। तीसरी बात ये है कि श्री कृष्ण रासलीला के समय जो वर्णन 29वें से 33वें अध्याय तक पाया जाता है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में, वो केवल 8 वर्ष के थे। चौथी बात कि श्री कृष्ण की रासलीला ये भौतिक जगत की नहीं होती है बल्कि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति योग माया के अंतर्गत हुई और होती है। और पांचवी बात जो कल हम चर्चा कर रहे थे वो ये है कि ये भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है और इसलिए भौतिक सृष्टि में जो सर्वोच्च है वो यहां निकृष्ट माना जाता है। इसलिए कृष्ण और गोपियों के बीच में जो लीला है जो सबसे मधुर और श्रेष्ठ होती है गोलोक वृंदावन में, भौतिक दृष्टिकोण से, अज्ञान के दृष्टिकोण से वो अच्छा नहीं माना जाता। तो यदि हम रासलीला को सही समझना चाहते हैं तो हमें गोलोक वृंदावन की दृष्टि से देखना होगा, भौतिक दुनिया की दृष्टि से नहीं। तो इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वैसे प्रतिबिंब का मतलब है कि यह सत्य नहीं है, सत्य कहीं और है। तो रासलीला सत्य है और हमारी जो भ्रांतियां हैं या गलत धारणाएं हैं वो असत्य है। वहां ऊंचा, यहां नीचा, नीचे। इसके लिए और एक उदाहरण भीष्मदेव श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनने की लीला की तो वो कृष्ण की लीला कृष्ण के राजाधिराज बनने की लीला से भी मधुर और श्रेष्ठ है। हालांकि इस दुनिया में देखा जाता है कि राजा बनना ये श्रेष्ठ माना जाता है और किसी का सारथी बनना ये श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। कोई कहा जाए किसी व्यक्ति से, आप पूछिए कि कौन श्रेष्ठ है, राजा, सम्राट की बात तो दूर है, राजाधिराज की बात दूर है, केवल किसी साधारण राजा की बात करें कि राजक पद श्रेष्ठ है या किसी सारथी का, ड्राइवर का, सेवक का स्तर ऊंचा है, तो हर एक व्यक्ति कहेगा राजा ये पद ऊंचा है। परंतु जब श्री कृष्ण अपनी लीला करते हैं तो भक्तों के समाज में ये अवश्य निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण जब पार्थ सारथी बने कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर, तो वो उनकी लीला द्वारकाधीश होने की लीला से श्रेष्ठ है, क्योंकि इतने बड़े राजा तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक और स्वामी आज अपने भक्त के साधारण सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति के रस के दृष्टिकोण से पार्थ सारथी की लीला द्वारकाधीश की लीला से श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें माधुर्य ज्यादा है, मिठास ज्यादा है। तो जो यहां निम्न श्रेणी का माना जाता है भगवान की लीलाओं में, वो श्रेष्ठ माना जाता है। उसी प्रकार से यदि आप किसी को पूछें इस दुनिया में कि सोने के गहने और अनमोल रत्नों के गहने, हीरे मोती के जवाहरात, वो श्रेष्ठ हैं, या कोई मोर पंख, गुंज की माला और सड़क पे पड़े हुए, वन में पड़े हुए थोड़े धातुओं के आभूषण, वो श्रेष्ठ हैं, साधारण व्यक्ति क्या जवाब देगा कि जो हीरे मोती रत्न आदि से बने हुए गहने हैं और आभूषण हैं वो श्रेष्ठ हैं। परंतु वृंदावन में भगवान कृष्ण का आभूषण क्या है? वो वैजयंती माला पहनते हैं, वनमाला, इसलिए उनका नाम है वनमाली। श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं, वो उनका आभूषण है। गुंज माला वृंदावन में पहनी जाती है, विशेष करके श्रीमती राधा रानी की बहुत प्रिय है गुंज माला। गुंज एक प्रकार की बेर है, तो उसकी माला बनती है। तो ऐसे वृंदावन का ऐश्वर्य कुछ अलग ही है। तो वृंदावन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गुंज माला, वैजयंती माला, मोर पंख, ये रत्नों के, हीरे मोतियों के आभूषणों से श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे देखा जाए तो भौतिक दुनिया की दृष्टि और गोलोक वृंदावन की दृष्टि अलग है, क्योंकि हमारा जन्म इस भौतिक दुनिया में हुआ है, अनेक जन्मों से हम यहां भौतिक दुनिया में ही रहे हैं और आध्यात्मिक दृष्टि का अनुशीलन करना कभी सीखे नहीं है या बहुत कम सीखे हैं। इसलिए जब हम रासलीला के बारे में सुनते हैं तो स्वाभाविक रहता है कि इस दुनिया के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, नहीं नहीं विवाह के बाहर यह हुआ है तो ये ठीक नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं। परंतु गोलोक वृंदावन में विवाह क्या और अविवाहित अवस्था क्या, कृष्ण के लिए क्या विवाहित अवस्था का महत्व है? सब कुछ कृष्ण का ही अंश है, सब कुछ कृष्ण की ही शक्तियां हैं। इसलिए जो वहां नीचा वहां यहां ऊंचा, जो वहां ऊंचा यहां नीचा माना जाता है। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम पहुंचे हैं कि गोपियां वास्तव में कौन है। रासलीला कृष्ण और गोपियों के बीच में होता है। अब कृष्ण कौन है इसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा तो कर चुके हैं, अब गोपियां कौन है ये जानना चाहिए। कल थोड़ा बहुत हम बता रहे थे कि कैसे आजकल जो गरबा दांडिया रास होता है उसको रास कहते हैं, रासलीला तो वास्तव में है नहीं। तो दांडिया रास में जो लोग जाते हैं उनकी भावना कैसी थी? उनकी भावना गोपियों की तरह नहीं है। गोपियों की भावना योग माया की भावना है, इसलिए कि उनके कोई भी लेश मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं है। परंतु ऐसे इस दुनिया के पुरुष स्त्रियों से नहीं कहा जा सकता, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में बतलाते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभीर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस गोविंद का नमन करता हूं जिनके अंतरंगा ह्लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राधा और कृष्ण एक हैं, कोई अंतर नहीं, केवल दो हो जाते हैं शक्ति और शक्तिमान की दृष्टि से, नहीं तो राधा कृष्ण में अंतर कोई नहीं है। एकात्मानाव अपिभुवि पूरा देह भेदम गतौ तौ, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि हैं वैसे एक आत्मा परंतु देह भेदम गतौ तौ, उन्होंने अपने आप को दो शरीरों में, हालांकि वो शरीर आध्यात्मिक है, बिल्कुल चिन्मय है, ऐसे दो रूपों में अपने आप को उन्होंने विस्तार किया है। तो राधा कृष्ण हैं एक तत्व परंतु दो में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, रस विलास के लिए, रस के आदान प्रदान के लिए, भक्ति के आदान प्रदान के लिए। और श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो उनको आनंद प्रदान करता है, दिव्य आनंद, उनके भी कई विस्तार हैं और ये विस्तार हैं गोपियां। तो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, गोपियां भी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, वो भी आध्यात्मिक है पूरी तरह से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो, तो वो श्री कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, और उनके साथ में और भी कई सखियां होती है और कई गोपियां होती हैं जो प्रतिक्षण रस का आस्वादन कर रही होती हैं, और ऐसे रस का आदान प्रदान कृष्ण और गोपियों के बीच में होता है, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मैं नमन करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में अपनी टीका में बताते हैं कि श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण की एक ही शक्ति है, परंतु वो एक शक्ति का विभाजन या प्राकट्य अनेक तरह से होता है, अनेक तरीकों से होता है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति हो जाती है योग माया, फिर भौतिक शक्ति हो जाती है महामाया। जिस प्रकार से ऊर्जा उत्पादन स्थान से बिजली एक ही प्रकार की उत्पन्न होती है, परंतु हमारे घर तक जब बिजली पहुंचती है, हम किसी गर्म करने वाले यंत्र में उस बिजली का प्रयोग करते हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न करने वाले किसी यंत्र में उस बिजली का प्रयोग यदि हम करेंगे तो ठंडक उत्पन्न होगी। तो बिजली ना तो ठंडी है ना गर्म है, बिजली तो बिजली है, यंत्र के ऊपर है। ठीक उसी प्रकार से भगवान की शक्ति एक ही है, परंतु जब वो बद्ध जीवों के लिए प्रयोग की जाती है तो उसे महामाया कहते हैं। जब आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र में ये शक्ति कार्य करती है तो उसे योग माया कहते हैं। शक्ति तो है एक, इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्, वो कहते हैं कि इस दुनिया में लोग मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि उनकी आंखें योग माया से ढकी हुई हैं, परंतु हम जानते हैं कि यहां बद्ध जीवों की दृष्टि महामाया से ढकी हुई है, योग माया से नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में योग माया शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि मूल शक्ति एक ही है, योग माया ही है। ये महामाया जो है वो योग माया की छाया मात्र है। छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ये महामाया योग माया की छाया मात्र है, मूल शक्ति वही है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति होने के बाद भी दो हो गए, और भगवान की अंतरंग योगमय शक्ति भी अपने आप को अनेक तरीकों से प्रकट करती है, विस्तार करती है। वो मूल शक्ति तो श्रीमती राधा रानी है, लादिनी शक्ति, और फिर उनके जो विस्तार होते हैं वो सब गोपियां हैं। तो जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं तो वो किनके साथ रासलीला करते हैं? अपने ही विस्तार के साथ, अपने ही शक्तियों के साथ, उनके बाहर किसी वस्तु के साथ नहीं करते, किसी दूसरे वस्तु के साथ नहीं करते, अपने ही शक्ति के साथ, और वो भी अपनी आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति के साथ वो लीला करते हैं। इसलिए इसमें तनिक भी कोई दोष का प्रश्न ही नहीं आता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक उपमा देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा यदि अपने परछाई के साथ, छाया के साथ खेल रहा हो तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, छाया तो उसी की है और वो खेल रहा है उससे। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं या अन्य लीलाएं करते हैं वो वैसे ही है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। ये है भगवान और उनकी शक्तियों के बीच में संबंध। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्यों में समझाते हैं कि गोपियां बिल्कुल आध्यात्मिक हैं, उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनको कभी साधारण नहीं मानना चाहिए। पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रमाण के रूप में रखा है और जिसके ऊपर उन्होंने बहुत लंबी टीका भी की है। श्लोक में ऐसा कहा गया है, गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेया ऋषिजा गोप कन्यकाः देव कन्याश्च राजेन्द्र न मनुष्याः कथांचन। वो कहते हैं कि जितनी भी गोपियां थीं सर्वप्रथम न मनुष्याः कथांचन, इनको बिल्कुल मनुष्य नहीं समझना चाहिए, मनुष्य जाति के नहीं है ये गोपियां। सर्वप्रथम तो सीधी बात, ये तो आध्यात्मिक है, इनका शरीर भी आध्यात्मिक, इनका अस्तित्व आध्यात्मिक, वो इस दुनिया की स्त्रियां नहीं हैं, वो गोलोक वृंदावन की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। इसलिए कभी भी गोपियों को साधारण स्त्री नहीं मानना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, एक बार हम किसी एक ब्राह्मण से चर्चा कर रहे थे तो वो कहने लगे कि आप श्रीमती राधा रानी को मानते हैं, लेकिन हमारी राय में तो राधा रानी केवल एक गोपिका स्त्री है। तो हमने पूछा उनको, केवल राधा रानी केवल एक गोपिका स्त्री है, मतलब क्या? मतलब आप सोचते हैं कि ये गोपियां भी कोई साधारण महिलाएं हैं इस दुनिया की महिलाओं की तरह? नहीं, न मनुष्य कथांचन, कभी भी इन गोपियों को साधारण महिला नहीं समझना चाहिए। तो यहां पर इस श्लोक में चार प्रकार की गोपियों का उल्लेख है। एक हैं श्रुतयो, दूसरे हैं ऋषिजा, तीसरे हैं देव कन्या और चौथे हैं गोप कन्यका। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीकाओं में बहुत विस्तार से, सुंदर ढंग से, बड़े सुलभ ढंग से हम सबको समझाया है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ में अनेक गोपियां गोलोक वृंदावन से उतर के आईं, अवतीर्ण हुईं कृष्ण के साथ। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब एक बड़ा व्यक्ति इस जगत में, उदाहरणार्थ एक राजा है या कोई मंत्री है, वो जब कहीं जाता है तो वो अकेला नहीं जाता। यदि राजा या राष्ट्रपति एक देश से, अपने देश से दूसरे देश में भ्रमण करने जाते हैं तो उनके साथ में कितने सारे सहायक होते हैं। तो जब एक साधारण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि अपने सहायकों को साथ में लेकर जाते हैं, तो फिर श्री कृष्ण जब भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं वो अकेले कैसे आएंगे? वो भी उनके साथियों को लेकर आते हैं, उनके नित्य पार्षदों को लेकर आते हैं, उनके धाम से, उनके आध्यात्मिक जगत से, उनके गोलोक वृंदावन से। और ये सारे पार्षद जब आते हैं तो श्री कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं, लीला को मधुर बनाने में, लीला को संपन्न करने में सहायता करते हैं। तो इनको नित्य सिद्ध पार्षद कहते हैं। जब श्री कृष्ण यहां भौतिक जगत में लीला करते हैं तो उनके पार्षदों में से अनेक ऐसे होते हैं जो उनके साथ में आए हुए होते हैं, नित्य सिद्ध इनको कहते हैं। नित्य सिद्ध मतलब ये हमेशा सिद्ध अवस्था में ही थे, गोलोक वृंदावन में हमेशा थे ये, इसलिए वो नित्य रूप से सिद्ध हैं। उनमें कभी भी तनिक भी कोई भौतिकता वाद का दोष नहीं है। और जब वो यहां आते हैं तो साधारण मनुष्यों की तरह, मनुष्य समाज के लोगों की तरह वो कार्य करते हैं, जैसे श्री कृष्ण भी स्वयं करते हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य की तरह, पुरुष की तरह व्यवहार करते हैं, वो भी मनुष्य समाज में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, हंसते बोलते हैं, शोक भी करते हैं, कभी कभी क्रोध भी उनको हो जाता है, वो भी युद्ध करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये भी साधारण मनुष्य है। लेकिन श्री कृष्ण तो अपनी जगह में भगवान ही है, परम सत्य ही है, इसलिए उनका नाम है अच्युत। अच्युत मतलब जिनका पतन नहीं होता, जो कभी भी च्युत नहीं होते हैं। जब श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि में भी आते हैं फिर भी वो भगवान ही रहते हैं हर अवस्था में, क्योंकि उनका स्वरूप ही सच्चिदानंद है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम ब्रह्मा जी के श्लोक से सुन चुके हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भिस, कि उनकी जो गोपियां हैं वो भी पूरी तरह से सच्चिदानंद ही हैं, उनका स्वरूप भी चिन्मय ही है जो उनके साथ में आते हैं। और जैसे श्री कृष्ण साधारण मनुष्य समाज में रहते हुए मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं, गोपियां भी ऐसी करती हैं। गोपियों के कार्य योग माया के अंतर्गत होते हैं, वो उस भाव में कार्य करती हैं कि श्री कृष्ण हमारे गांव के गोप हैं, गोपाल हैं और मैं गोपी हूं, ऐसा उनका भाव रहता है। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि लीला शब्द क्या, इसका क्या अर्थ है। जब श्री कृष्ण अपने आप को एक ग्वाल बाल समझते हैं, गोपाल समझते हैं, ये उनकी लीला है। श्री कृष्ण है परम सत्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उद्गम है वो, परंतु वो अपने आप को एक गोपाल या ग्वाल बाल समझना पसंद करते हैं और उसी भाव में वो कार्य करते हैं। तो ऐसे भाव को और उस भाव के अनुसार जो कार्य होते हैं उनको लीला कहते हैं। तो उसी प्रकार से गोपियों के लिए भी वही है, गोपियां भी लीला करती हैं। ये लीला शब्द केवल भगवान और उनके निकट के पार्षदों के संदर्भ में किया जा सकता है। हम जो कार्य करते हैं इस भौतिक सृष्टि में उसको लीला नहीं कहते, उसको कर्म कहते हैं, भले अच्छे कर्म हो गलत कर्म हो। तो गोपियां भी लीला कर रही थी, जो उनके साथ में आए थे, जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं उनकी भी लीला है। वो तो शत प्रतिशत आध्यात्मिक है, चिन्मय है, कभी भी उनका स्पर्श भौतिक सृष्टि से नहीं होता, जैसे श्री कृष्ण का नहीं होता है। हालांकि वो भौतिक सृष्टि में आते हैं लेकिन भौतिक संसार का स्पर्श नहीं करती हैं ये गोपियां। तो गोपियों का देह बिल्कुल आध्यात्मिक है। तो फिर ये पूछा जा सकता है कि उनकी तो पति थे उनके साथ में, तो फिर कैसे हम समझ सकते हैं इस बात को। तो हमें यह जानना है कि जैसे भगवान नारायण और श्रीमती लक्ष्मी देवी वो हमेशा साथ में रहते हैं। लक्ष्मी देवी के अधिकार केवल नारायण पर है, और कोई लक्ष्मी देवी का साथ नहीं रह के साथ में नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार से सीता देवी के साथ में रहने का अधिकार केवल श्री रामचंद्र जी का है, कोई इस भौतिक जगत का आदमी नहीं रह सकता। आपको याद होगा चैतन्य चरितामृत की का वो प्रसंग जिसमें एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण बड़ा विचलित हो गया था, क्योंकि वो रामायण पढ़ रहा था और इसमें इस प्रसंग तक पहुंचा कि श्रीमती सीता देवी का अपहरण किया है रावण ने। तो ये ब्राह्मण जो है बहुत दुखी हो गया था। चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया था प्रसाद के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि प्रसाद की तो कोई तैयारी नहीं है, कोई निशानी नहीं। जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि वे शोक में हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको सांत्वना दी और जब आगे चले दक्षिण भारत में तो उन्हें कूर्म पुराण के थोड़े पन्ने प्राप्त हुए, और कूर्म पुराण कूर्म पन्ने को ले आकर बाद में उस ब्राह्मण को उन्होंने पढ़ा के सुनाया और वो दिया भी, जिसमें ये बताया गया था कि सीता देवी का अपहरण जब हुआ तो रावण ने मूल सीता देवी का अपहरण नहीं किया, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सीता देवी को स्पर्श कोई नहीं कर सकता श्री राम के अलावा, करना चाहे भी तो संभव नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति भगवान की शक्ति है। भौतिक शक्ति में रमण करने वाले लोग भौतिक शक्ति तक ही सीमित रह सकते हैं, वो कभी भी आध्यात्मिक शक्ति में नहीं जा सकते जब तक कि वो भगवान के शरण में जाके शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। तो फिर उस ब्राह्मण को पता चला कि जिस सीता देवी का अपहरण रावण करके ले गया वो माया सीता है, क्योंकि रावण तो एक भौतिक व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, एक असुर है, वो भला कैसे अंतरंगा शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी लक्ष्मी देवी को छू भी सकते हैं, संभव नहीं है। तो सीता देवी जो रावण के साथ गई वो माया सीता थी, एक दूसरी रूप थी सीता देवी की जो सीता देवी ने प्रकट किया। सीता देवी तो रह गई अग्निदेव के पास, और फिर जब वापस आके अग्नि परीक्षा हुई सीता देवी की तो मूल सीता फिर से अग्नि में से प्रकट हो गई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति का स्पर्श कोई भी भौतिक व्यक्ति नहीं कर सकता, भगवान के अलावा किसी का अधिकार नहीं है उनकी अंतरंगा शक्ति का भोग करने का, बल्कि उनकी भौतिक शक्ति का भोग करने का भी अधिकार किसी को नहीं है। और भगवान तो अपने भौतिक शक्ति का भोग करने में रुचि नहीं लगते हैं, वो तो अंतरंगा शक्ति में संतुष्ट हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि जो ये गोपियां हैं जो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी जो बिल्कुल चिन्मय हैं, उनके कोई पति कैसे हो सकते हैं? तो ये एक केवल लीला है। ऐसे बताया जाता है कि ये जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं इनका स्पर्श कभी पतियों के साथ नहीं हुआ। तात्पर्य में बताया गया है कि जो पतियों के साथ में रहे वो वास्तव में उनकी माया गोपी कह सकते हैं, जैसे माया सीता थी रावण के साथ वैसे माया गोपी कह सकते हैं, उनका डबल रूप, एक दूसरा रूप। इसलिए जब ये नित्य सिद्ध गोपियां अपने घरों को छोड़कर वंशीवट चली गई बीच रात में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर, उस समय पतियों ने रोकने का प्रयास तो किया था लेकिन फिर भी वो चली गई। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि इतनी सारी गोपियां अपने घर को छोड़कर चली गई जबकि परिवार के सदस्य नहीं चाहते थे, तो क्या वृंदावन में उत्पात नहीं हुआ होगा? वृंदावन में तो हंगामा हो गया होगा। तो कैसे हंगामा नहीं हुआ, अगले दिन शांति से सब कुछ कैसे चला? मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसका कारण ये है कि योग माया ने गोपियों के बिल्कुल दूसरे रूप प्रकट कर दिए, जो कि अपने पतियों के साथ रहे। पतियों को कुछ पता ही नहीं चला कि उनकी वास्तविक जो मूल गोपियां हैं वो सब कृष्ण के पास चली गई हैं, उनके पास कोई दूसरी छवि उनकी रह गई। ऐसे श्रीमद् भागवत में इस रास पंचाध्याय के अंत में, 33वें अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे ही कहते हैं कि इसलिए गोपों के मन में कृष्ण के प्रति कोई वैर उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं चला कि हमारी पत्नियां जो है, जो सचमुच जो गोपियां हैं वो चली गई हैं, ये केवल उनका दूसरा रूप है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो जगह जगह पर ये बात बताई गई है कि जो गोपियां गई तो उनके पीछे एक और गोपी योग माया ने निर्माण किया बिल्कुल वैसे ही, इसलिए उनके पतियों को, सास ससुर को, बच्चों को, किसी को पता नहीं चला। सोच लीजिए यदि कोई पीछे रह नहीं जाता तो क्या हुआ होता, कितना बड़ा, कितनी बड़ी समस्या हो गई होती। तो इस तरह ये नित्य सिद्ध गोपियां चली गई श्री कृष्ण के साथ, वहां उन्होंने रासलीला की, वापस चली भी आई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। शुरुआत में थोड़ा कुछ हुआ जब वो जाना चाहती थी और परिवार के सदस्यों ने रोकना चाहा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया इनके लिए। तो ये जो गोपियां हैं पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, भगवान की शक्ति है तो कोई दोष नहीं। तो और कौन सी गोपियां हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इन नित्य सिद्ध गोपियों के अलावा ऐसे भी थोड़ी गोपियां थीं जो सीधे भगवान के धाम से अवतीर्ण नहीं हुई थी श्री कृष्ण के साथ में, बल्कि वो यहां पे भगवान कृष्ण की भक्ति करके इस भौतिक सृष्टि में इस योग्य हुई थी कि उनको गोपियों का देह मिला था वृंदावन में और वो कृष्ण का संग कर पाई थी। तो ऐसे गोपियों को साधन सिद्ध गोपी कहते हैं, जो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर चुकी लेकिन साधन भजन करके, अनेक जन्मों से भक्ति करते आए थे, भक्ति योग को स्वीकार करते हुए अनेक जन्मों से अंत में वो परिपूर्णता को प्राप्त कर लिए। तो ऐसे साधन सिद्ध गोपी भी कई तरह के हैं और उनमें से एक हैं जिनको श्रुतिचारी गोपी कहते हैं, जो मूर्तिमान उपनिषद हैं, उपनिषदों के प्रतिष्ठाता देव हैं, वो भी श्री कृष्ण की भक्ति गोपियों के पदचिन्हों में चल के करना चाहते थे। इसलिए जब उनका बाह्य देह पुरुष का था वो तो संभव नहीं था, इसलिए उनको फिर अगले जन्म में वृंदावन में जन्म मिला एक गोपी के गर्भ से, वो भी गोपियां हो गई, तो उनको श्रुतिचारी गोपी कहते हैं। और दूसरे प्रकार की गोपियां जिन्होंने जन्म लिया उनको ऋषिचारी या मुनिचारी गोपी कहते हैं। और इस बात का संबंध श्री रामचंद्र के वनवास से संबंधित है। जब श्री रामचंद्र दंडकारण्य में गए थे सीता देवी और लक्ष्मण के साथ में, तो वहां अनेक ऋषि मुनि थे। तो श्री रामचंद्र का सुंदर दिव्य रूप देखकर उनको अपने आराध्य देव श्री हरि और विशेष करके गोपाल का स्मरण आया। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण बार बार आते हैं, जैसे श्री राम भी बार बार प्रकट होते हैं भौतिक जगत में, तो श्री कृष्ण भी बार बार आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण पहली बार 5000 वर्ष पहले पूर्व आए थे यहां भौतिक सृष्टि में अवतार लेकर। ब्रह्मा जी के हरेक दिन में एक बार श्री कृष्ण आते हैं, श्री राम भी वैसे ही। तो श्री राम त्रेता युग में आए, श्री कृष्ण द्वापर में आए, तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि राम के समय कृष्ण का नाम कहां से आया? क्योंकि श्री कृष्ण तो हमेशा है, वो समय समय पर आते रहते हैं। तो उन ऋषियों को जो कि श्री कृष्ण के भक्त थे, श्री हरि का स्मरण कर रहे थे और उन्होंने श्री रामचंद्र को देखकर उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि हम भी माधुर्य रस में इनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र ने मन ही मन में उनकी बात जान ली, क्योंकि श्री रामचंद्र भी अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, उनकी बात जान ली और सोचा कि इस जन्म में तो यह संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया है और दूसरी बात आप पुरुष देह में हैं तो इसलिए यह संभव नहीं है, पर लेकिन अगले जन्म में आपका जन्म वृंदावन के गोपियों के गर्भ से होगा, आप भी गोपी बन जाएंगे और उस समय आप मेरा संग पाएंगे और उस माधुर्य श्रृंगार भाव में आप मेरी सेवा कर पाएंगे। तो ये ऋषि दंडकारण्य के ऋषियों को फिर जन्म मिला वृंदावन में। तो थोड़ी गोपियां जो थी वो ऐसी थी। वैसे और एक सूक्ष्म बात आपको बताना चाहते हैं कि आप तो जानते हैं कि यहां हम जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में लौट के चले जाएं, गोलोक वृंदावन में, सही है ना? और जब हम शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो हम गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, परंतु जब हम पूरी तरह से शुद्ध भक्त हो जाते हैं तो हम सीधे गोलोक वृंदावन नहीं जाते हैं, उसके पहले एक स्टेशन आता है। रेलगाड़ी सीधे गोलोक वृंदावन नहीं जाती। जब श्री कृष्ण यहां प्रकट होते हैं, हर एक ब्रह्मांड में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, उनके धाम से अवतीर्ण होते हैं, तो हमेशा उनके साथ आने वाले नित्य सिद्ध पार्षद तो रहते ही हैं और जो साधन करके जो परिपूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे भक्त भी उनके संग में आते हैं और जो नित्य पार्षद हैं उनके संग में रह के प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेनिंग मिलता है उनको कि गोलोक वृंदावन में जाके क्या करना है, कैसे करना है, जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं उनको पता चलता है। फिर ऐसे नित्य सिद्ध गोप गोपियों के साथ में रह के, गाय गायों के साथ, मोरों के साथ इत्यादि जो भी हैं वो, उनके संग में साथ रह के प्रशिक्षण उनको मिलता है, उनके संग से उनको पता चलता है कि वास्तव में वृंदावन, गोलोक वृंदावन की गोपियों का भाव कैसे होता है और थोड़ा बहुत जितना भी लेश मात्र अणु मात्र जो कलमश होता है, जो रह चुका होता है, वो भी खत्म हो जाता है। फिर उस जन्म के बाद वो गोलोक वृंदावन चले जाते हैं और गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ नित्य लीला में रमण करते हैं। तो ये दंडकारण्य के ऋषि भी, वो श्रुतिचार्य ऋषि भी इसी प्रकार के थे। और भी कई श्रेणियां थी जो ऐसे साधन सिद्ध गोपी बने, इसके बारे में विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन केवल संक्षेप में बताएंगे कि मिथिला के महिलाएं अनेक थीं जिन्होंने श्री रामचंद्र के सुंदर दिव्य को रूप को देखकर इसी प्रकार से सेवा करना चाहा, उनको भी ऐसे अवसर मिला व्रज लीला में, वृंदावन लीला में। तो ऐसे अनेक गोपियां थीं जो साधन सिद्ध कहलाती थीं। तो इन साधन सिद्ध गोपियां ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनमें से अनेक ऐसे गोपियां थीं जो नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके पूरी तरह से आध्यात्मिक उनका भी शरीर बन गया था। वो भी अपने घरों से निकल पड़ी थीं श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर, की ध्वनि सुनकर, और उनके पीछे भी कोई योग माया द्वारा निर्मित कोई एक दूसरा रूप रह गया उनके पतियों, तथा कथित पतियों के संग में। तो ये गोपियों के तथा कथित पति हैं, सही पति नहीं है, केवल एक लीला के लिए, लीला के रस को बढ़ाने के लिए ये अपने पतियों की भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से किसी नाटक में, किसी सिनेमा में क्या होता है कि कोई पति पत्नी की भूमिका निभाते हैं, सचमुच नहीं उनको भी पता होता है कि हम सचमुच पति पत्नी नहीं है, केवल हम लीला कर रहे हैं, यहाँ लीला नहीं, हम केवल यहाँ सिनेमा में, ड्रामा में, कुछ नाटक में भाग ले रहे हैं। यह वृंदावन में हुआ इतना ही कि योग माया के प्रभाव से उनको पता नहीं चला कि वास्तव में हम पति पत्नी नहीं है। पति तो सोच रहे हैं अपने पति हैं, पत्नी हैं, और गोपियां सोच रही हैं कि ये मेरे पति, हमारे पति हैं, लेकिन असली पति तो कृष्ण हैं। ये गोपियों का भाव है। तो इस तरह से ये सारे साधना सिद्ध गोपी में से थोड़े जो नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके पूरी तरह से आध्यात्मिक बन गए, वो भी कृष्ण का संग कर पाए उस रात को, शरद पूर्णिमा के रात को, और उनके पीछे भी योग माया निर्मित दूसरा रूप रह गया। थोड़े ऐसे साधन सिद्ध गोपी थे जो पूरी तरह से शत प्रतिशत आध्यात्मिक नहीं थी, 99.99 हो सकता है, थोड़ा कुछ अणुमात्र कुछ रह गया था। तो जब उनके पतियों ने, सास ससुरों ने उनको रोका, तो जो उनको व्याकुलता हुई अपने मन में, जो तनाव हुआ, जो शोक उत्पन्न हुआ उनके मन में, उससे वो अणुमात्र जो भी कलमश रह गया था उनके शरीर में, उनके हृदय में, वो भी नष्ट हो गया, वो भी शत प्रतिशत शुद्ध हो गई, और योग माया ने उनको भी भेज दिया वंशीवट, और उनके पीछे दूसरी कोई गोपी रह गई उनके जैसे ही दिखने वाली, दूसरी रूप योग माया द्वारा निर्मित। और बचे हुए जो साधना सिद्ध गोपियां थीं, उनके अंदर भी बहुत कम कलमश, बहुत मतलब बहुत बहुत कम, नहीं तो वो गोपियां बन ही कैसे सकती थी, बहुत कम लेश मात्र उनके अंदर कलमश था। तो फिर वो अपने पतियों के साथ में रह गए, वो नहीं जा पाई, और अपने घर में रहते रहते जब जबरदस्ती घर में रखी गई, तो उनको इतना दुख हुआ, इतना विरह हुआ, कि उस दुख के कारण, तथा कथित दुख, क्योंकि ऐसा दुख जो कृष्ण के विरह में होता है, ये वास्तव में आध्यात्मिक स्तर का आनंद होता है। तो ऐसे विरह के अग्नि में उनका ये थोड़ा बहुत जो भी कलमश था वो भी जल गया, खत्म हो गया, उनके सारे कलमश खत्म हो गए। और अपने ही मन उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर अपने घर में बैठे बैठे ध्यान किया कृष्ण के ऊपर, और उस ध्यान करते करते उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई, कृष्ण के सानिध्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, तो उनके शारीरिक निकटता में और मानसिक निकटता में कोई अंतर नहीं है। यदि हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम श्री कृष्ण के निकट ही हैं, हम कृष्ण के संग में ही हैं। परंतु हम श्री कृष्ण के शारीरिक सानिध्य में होते हुए भी सही भाव नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे सानिध्य का अधिक मूल्य नहीं है। तो इन गोपियों ने अपने मन ही मन श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करके अपना जीवन परिपूर्ण कर दिया। फिर योग माया ने, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, उस दिन तो उनको, उस रात को तो जाने नहीं दिया, लेकिन और एक दिन कभी जब रासलीला और हुई, उस समय उनको भेज दिया, क्योंकि तब तक उस विरह के भाव से वो पूरी तरह से अब अन्य गोपियों की तरह हो गई थी। तो ये सब बातें हैं गोपियों के बारे में। तो ऐसे हैं गोपियां, और जो भी साधन सिद्ध गोपियां भी हैं, और वो गोपियां जो अंत में जा भी नहीं पाई उस रात को, उनको भी साधारण स्त्रियां नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेमा भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं, तो हम प्रगति करना शुरू करते हैं। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है हमें, हमारे अंदर, जिसके कारण भगवान हमें भक्तों के संग में आके जोड़ देते हैं। तो हम सब भक्तों के संग में आए हैं ये कोई अकस्मात नहीं हुआ, अपने कोई योग्यता से नहीं हुआ, भगवान की कृपा से हुआ है। जब थोड़ी बहुत श्रद्धा देखी भगवान ने, हमारे पूर्व जन्मों के जो अज्ञात सुकृति है, भक्तिमय सुकृति है, जब उसकी पूंजी बढ़ गई और श्रद्धा थोड़ा बहुत हो गया कृष्ण भक्ति में, भक्तों में, तो भक्तों के संग हमें दिला देते हैं श्री कृष्ण। और ऐसे संग करते हुए आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, जब भक्तों के संग में आते हैं हम भजन क्रिया, तो हम तरह तरह से भक्ति की विधियां करते हैं, जैसे जप करना, कीर्तन में शामिल होना, कथा सुनना, गीता भागवत का अध्ययन करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना इत्यादि। इन विभिन्न सेवाओं को हम करते हैं, विधियों का पालन करते हैं, भजन क्रिया। तो ऐसे भजन क्रिया करके अनर्थ निवृत्ति के स्तर को पहुंचते हैं। अनर्थ निवृत्ति अर्थात जब हृदय में अनर्थों का निवारण होता है, उसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। जो व्यक्ति जप करना शुरू करता है, किसी न किसी तरह से भक्ति योग के अंगों का पालन करता है, शुरुआत मात्र भले वो क्यों ना करे, उसकी अनर्थ निवृत्ति शुरू हो गई है। शुरू करना तो ठीक है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के अंत तक पहुंचना ये बड़ी बात है। तो अनर्थ भजन करते करते, साधन करते करते कोई व्यक्ति आगे ऊंचे स्तर तक पहुंचता है जब अनर्थ निवृत्ति को पार करता है। दूसरे शब्दों में काफी कुछ उसके अनर्थ नष्ट हो चुके होते हैं, फिर वो निष्ठा के स्तर में पहुंच जाता है, जब उसकी श्रद्धा अब सुदृढ़ हो जाती है। निष्ठा के स्तर से बाद में रुचि का स्तर होता है, जब कृष्ण की सेवा के प्रति बहुत ही तीव्र, अति तीव्र रुचि उत्पन्न हो जाती है। संसार के किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रहती उसके मन में, अब केवल कृष्ण की रुचि, बस यही एक भक्ति का स्वाद वो चखना चाहता है 2400 घंटे। संसार का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं करता। रुचि के बाद और एक ऊंचा स्तर है आसक्ति, जब वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि किसी भी हालत में कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकता। और आसक्ति के बाद और एक स्तर है जिसको भाव भक्ति कहते हैं। भाव भक्ति में व्यक्ति को प्रेम होने लगता है श्री कृष्ण से, और तरह तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, अष्ट सात्विक विकार, जैसे स्वाभाविक तौर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाता है, ऐसे अनेक लक्षण उत्पन्न होते हैं भाव के कारण। ये तो बहुत ही ऊंचा स्तर है। और उसके बाद अंतिम स्तर है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में जाके ही हमारे सारे अनर्थों का निवारण वास्तव में होता है, जो थोड़े बहुत रह गए उनका भी निवारण होता है। तो परिपूर्णता का स्तर है प्रेमा भक्ति। अभी हम सब अनर्थ निवृत्ति के स्तर में हैं, अनर्थों का निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक पूर्ण हुआ नहीं। अब और जाके कितने स्तर हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम में पहुंचेंगे। जब तक हम प्रेमा भक्ति की अवस्था में नहीं पहुंचते, तब तक श्री कृष्ण हमें गोलोक वृंदावन नहीं ले जाएंगे, या हमें किसी भौम वृंदावन में जहां श्री कृष्ण लीला करेंगे ऐसे स्थान में भी नहीं ले जाएंगे। तो ये जितने भी श्रुतिचारी गोपियां हैं, ऋषिचारी गोपियां हैं, अपने पूर्व जन्म में प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए तो उनको ऐसे जन्म मिला। फिर भी और थोड़ा कुछ बहुत बाकी था, इसलिए वो उस जन्म में भगवान ने निपटा लिया उनका। नित्य सिद्ध पार्षदों के साथ संग करके, उनके नीचे प्रशिक्षण प्राप्त करके, फिर वो परिपूर्ण हो गए, वो भी आगे चली गई। तो जो व्यक्ति प्रेमा भक्ति के स्तर में है, तो क्या फिर वो बंद कर दीजिए अभी इसको, हा? भागने से पहले यही बंद कर देना चाहिए। अगली बार इसका फोन बजेगा तो दंड मिलेगा, ठीक है। कहां गोपियों की कथा वृंदावन में, और कहां अचानक ये संगीत, दूसरा संगीत है ना। तो खैर, हम बता रहे थे कि गोपियां जो हैं, नित्य सिद्ध की बात तो दूर रही है, केवल साधना सिद्ध गोपियां भी ये प्रेम भक्ति की अवस्था में स्थित हैं। और प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी रूप गोस्वामी बताते हैं और भी आगे बहुत जाना है, उसके भी कई स्तर और हैं, परंतु प्रेम भक्ति का स्तर परिपूर्णता का स्तर है, इसलिए इसके आगे जो भी है वो केवल परिपूर्णता की असीमित अवस्था को प्राप्त करते रहते हैं, परिपूर्णता की सीमा नहीं है। तरतम्य ज्ञान इसको कहते हैं, पूर्ण और भी पूर्ण, अति पूर्ण सबसे ज्यादा पूर्ण, पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम, तीनों ही पूर्ण हैं, पूर्णता के अलग अलग स्तर हैं। तो वृंदावन की पूर्णता पूर्णतम है, मथुरा इत्यादि की पूर्णता पूर्णतर है, वैकुंठ आदि की पूर्णता पूर्ण है। तो पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम, तो प्रेमा भक्ति की अवस्था में भी गोपियों ने ऊंचे 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 स्तर प्राप्त करना शुरू किया था, और वो भी फिर अंततः नित्य सिद्ध गोपियों के समान ही बन गई। तो देखिए हम किन की बात कर रहे हैं। जो काम वासना होती है वो तो अनर्थ निवृत्ति के समाप्ति पर ही खत्म हो जाती है, आगे निष्ठा रुचि भाव प्रेम ये सब और भी ऊंचा है। तो ये गोपियां कौन हैं, साधना सिद्ध गोपियां भी अगर इनके बारे में भी यदि हम चर्चा करें तो ये वो हैं जो पिछले जन्म में प्रेम भक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं, जो अनर्थ निवृत्ति के काफी आगे निकल चुकी हैं, काम नाम की कोई लेश मात्र उनके हृदय में उपस्थिति नहीं है। तो जब वो रासलीला में जाएंगी तो किस भाव से जाएंगी, इस दुनिया में जैसे लोग किसी नृत्य के पीछे जाते हैं वैसे उनका भाव नहीं था। तो ये है गोपियां, नित्य सिद्ध गोपियों का वो स्थान और साधना सिद्ध गोपियों का भी ये स्थान। तो देखिए श्री कृष्ण तो भगवान है, वो तो पूरी तरह से ही शुद्ध है, तो गोपियां भी शुद्ध हैं। तो जब गोपियां पूरी तरह से आध्यात्मिक है और शुद्ध है, प्रेमा भक्ति की अवस्था में स्थित हैं, और श्री कृष्ण भी तो चिन्मय पूरी तरह से हैं, तो उनके बीच में तो लीला है, संबंध है, नृत्य है आदि, वो कैसे साधारण भौतिक हो सकता है, वो भी तो शुद्ध होना चाहिए। तो खैर ये गोपियों का स्थान है, और काफी गोपियों के बारे में और चर्चा करनी है, लेकिन वो हम कल करेंगे। थोड़ा आप सबको विचार करने के लिए थोड़ा कुछ देना चाहिए ना, नहीं तो एक साथ में भर के बहुत दिया तो फिर अपचन हो जाता है, इसलिए कल के लिए भी थोड़ा कुछ छोड़ना है। और वैसे एक भजन भी गाना है, तो अभी थोड़ा भजन गाएंगे, फिर दर्शन होंगे और फिर नाट्य लीला होगी। यदि कथा को और जारी रखा तो और देर होता जाएगा। हरे कृष्णा। कि आज की बातें बहुत कठिन लगी आपको, कि समझ पाए आप सब, ज्यादा मुश्किल हुई समझने, ठीक है। हरे कृष्णा।